नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉटली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, बिकमिंग स्टीव जॉब्स। ब्रेंच लेंडर और रिक टेक्सली की व्यावसायिक जीवनी है, जो एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को केवल जन्मजात प्रतिभा या कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखती। पुस्तक का मुख्य प्रश्न यह है कि उग्र, अधीर और अक्सर विनाशकारी निर्णय लेने वाला युवा उद्यमी एप्पल से निकाले जाने के बाद अधिक प्रभावी और परिपक्व नेता कैसे बना। लेखक जॉब्स के साथ श्लेंडर के लंबे पत्रकारिता संबंध तथा एप्पल, पिक्सार और डिज्नी के सहयोगियों व परिवारजनों की बातचीतों के आधार पर यह परिवर्तन समझाते हैं। इसका केंद्र उत्पादों की सूची नहीं बल्कि नेतृत्व सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट की सीमाओं, पिक्सार के अनुभवों और एप्पल में वापसी के माध्यम से जॉब्स ने नियंत्रण, सहयोग, धैर्य और उत्पाद केंद्रित रणनीति के बारे में क्या सीखा, यही इसका विषय है। पुस्तक जॉब्स की कमियों को छिपाती नहीं, लेकिन उन्हें स्थायी व्यक्तित्व दोष मानने के बजाय विकसित हो सकने वाली नेतृत्व क्षमताओं के संदर्भ में रखती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एप्पल से निष्कासन को असफलता नहीं, नेतृत्व परिवर्तन के मोड़ के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे अलग तर्क यह है कि 1985 में एप्पल से जॉब्स का बाहर होना उनके जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने का कठोर चरण था। आरंभिक एप्पल में उनकी तीव्रता, सौंदर्यबोध और असाधारण उत्पाद दृष्टि उपयोगी थे, पर उनका आवेग, हर निर्णय में हस्तक्षेप और लोगों से टकराव संगठन को अस्थिर भी करते थे। लेखक इस दौर को केवल बोर्डरूम संघर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, वे दिखाते हैं कि तकनीकी समझ और प्रेरक क्षमता होने पर भी बड़े संस्थान को चलाने के लिए भरोसा, प्राथमिकता और संचालन अनुशासन चाहिए। जॉब्स ने बाद में स्वयं सार्वजनिक असफलता का अनुभव स्वीकार किया और फिर से काम शुरू करने का निर्णय लिया। यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तक के अनुसार उनका परिवर्तन किसी अचानक आत्मज्ञान से नहीं आया। बहु वर्षों के व्यावहारिक अनुभव, गलत आकलनों और नए सहयोगियों से सीखने का परिणाम था। एप्पल में वापसी पर वे उतने ही मांग करने वाले रहे, किंतु उनकी ऊर्जा अधिक केंद्रित हुई। उन्होंने सीमित उत्पादों, स्पष्ट जिम्मेदारियों और सक्षम लोगों के साथ काम करने पर जोर दिया। इस तरह निष्कासन ने उनकी मूल महत्वाकांक्षा नहीं बदली बल्कि उसे कार्यान्वित करने का ढंग बदला। पुस्तक असफलता को रोमांटिक नहीं बनाती बल्कि बताती है कि उससे लाभ तभी निकलता है जब व्यक्ति अपने पुराने व्यवहार की सीमाओं को पहचानकर नई कार्य पद्धति अपनाए। दूसरा, नेक्स्ट और पिक्सार ने जॉब्स को नियंत्रण के बजाय सीखने और साझेदारी का मूल्य सिखाया। नेक्स्ट और पिक्सार पुस्तक में केवल एप्पल वापसी के बीच का अंतराल नहीं है, ये वे संस्थान है जहां जॉब्स की नेतृत्व पद्धति की परीक्षा हुई। नेक्स्ट में उत्कृष्ट कंप्यूटर बनाने की उनकी इच्छा बार बार अत्यधिक महत्वाकांक्षी डिजाइन, खर्च और धीमी प्रगति से टकराई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी संस्थापक की निजी पसंद हर व्यावसायिक निर्णय का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। उत्पाद की गुणवत्ता आवश्यक है, लेकिन बाजार, समय, लागत और टीम की क्षमता भी उतने ही निर्णायक है। दूसरी ओर, पिक्सार ने उन्हें ऐसे रचनात्मक और तकनीकी नेताओं के साथ काम कराया जिनकी विशेषज्ञता उनसे अलग थी। एड कैकमर जैसे सहयोगियों के साथ संबंध ने यह संकेत दिया कि सर्वोत्तम नेता हर उत्तर जानने का दावा नहीं करता, वह ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिनमें विशेषज्ञ खुलकर समस्या सुलझा सके। पुस्तक जॉब्स के पिक्सार योगदान को कम नहीं करती पर उसे अकेले नायक की कहानी भी नहीं बनाती। वित्तीय धैर्य, वितरण समझौते और रचनात्मक टीम की स्वायत्तता सभी पिक्सार की सफलता के हिस्से थे। इन अनुभवों ने जॉब्स को सलाह सुनने, बातचीत में व्यावहारिक होने और दीर्घकालिक मूल्य पर सोचने में मदद दी। एप्पल में लौटने के बाद यही सीख डिजाइन, इंजीनियरिंग और संचालन के बीच अधिक प्रभावी समन्वय में दिखाई देती है। तीसरा, सरलता को सजावटी न्यूनतावाद नहीं, कठिन रणनीतिक चयन के रूप में समझना। जॉब्स के साथ सरलता का विचार अक्सर केवल साफ सुथरे उत्पाद रूप या कम बटनों तक सीमित कर दिया जाता है। पुस्तक इसे अधिक व्यापक रणनीतिक सिद्धांत के रूप में रखती है। सरल अनुभव बनाने के लिए कंपनी को पहले जटिल विकल्पों में से कठोर चयन करना पड़ता है। कौन से उत्पाद बनाए जाए, किन विशेषताओं को हटाया जाए, किन तकनीकों को एक साथ जोड़ा जाए और उपयोगकर्ता को किस निर्णय से बचाया जाए, ये सभी नेतृत्व के प्रश्न है। एप्पल में वापसी के बाद जॉब्स ने बिखरी हुई उत्पाद श्रृंखला को सीमित करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य केवल खर्च घटाना नहीं था, कम प्राथमिकताएं रखने से टीम का ध्यान उन उत्पादों पर केंद्रित हो सकता था जिनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता अनुभव को एकीकृत किया जा सके। पुस्तक यह भी बताती है कि जॉब्स के सौंदर्यबोध की जड़ें वस्तु के अदृश्य हिस्सों तक गुणवत्ता रखने की पारिवारिक सीख में थीं। फिर भी यह दृष्टि तभी संगठनात्मक लाभ बनी जब उसे टीमों, निर्माण और बाजार की वास्तविकताओं से जोड़ा गया। अतः सरलता यहां सहजता का परिणाम नहीं बल्कि अनुशासन का परिणाम है। उद्यमियों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ है कि अधिक विकल्प देना हमेशा बेहतर सेवा नहीं होता। स्पष्ट उत्पाद दृष्टि अक्सर यह तय करने में दिखती है कि क्या नहीं बनाया जाएगा, किस पर संसाधन नहीं लगाए जाएंगे और ग्राहक के सामने जटिलता कैसे कम की जाएगी। चौथा, दृष्टि और वास्तविकता के बीच संतुलन, जॉब्स की परिपक्वता का केंद्रीय अंतर। पुस्तक जॉब्स की उस क्षमता को महत्व देती है जिसमें वे वर्तमान बाजार से आगे की संभावना देख सकते थे। वे केवल उपलब्ध तकनीक का मूल्यांकन नहीं करते थे, बल्कि यह कल्पना करते थे कि तकनीक लोगों की रोजमर्रा के अनुभव को कैसा बना सकती है। यही दृष्टि एप्पल के कई निर्णायक उत्पादों की दिशा समझने में मदद करती है। लेकिन लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि संभावना देखने और उसे सफल उत्पाद में बदलने के बीच बड़ा अंतर है। शुरुआती जॉब्स अक्सर अपने विश्वास की ताकत से समय, लागत या तकनीकी सीमाओं को पीछे धकेलना चाहते थे। बाद के वर्षों में उनकी तीव्रता बनी रही, पर अनुभव ने उसे बेहतर तैयारी और चरणबद्ध निर्णयों से जोड़ा। पिक्सार में फिल्म निर्माण की दीर्घ अवधि और एप्पल में जटिल उत्पाद विकास ने दिखाया कि उत्कृष्ट परिणाम के लिए केवल प्रेरक विचार पर्याप्त नहीं है। सही प्रतिभा, उत्पादन क्षमता, साझेदारियां और धैर्य भी आवश्यक है। यह संतुलन पुस्तक को साधारण नवाचार कथा से अलग बनाता है। यह न तो जॉब्स की तथाकथित रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड को पूर्ण गुण मानती है, न उसे केवल दोष कहती है। संदर्भ के अनुसार वही असाधारण आगरा टीम को ऊंचा लक्ष्य दे सकता है या उसे अव्यावहारिक दबाव में डाल सकता है। नेतृत्व की परिपक्वता का अर्थ दृष्टि खोना नहीं, बल्कि उसे ठोस निष्पादन से जोड़ना है। अंत में एप्पल की वापसी में व्यक्ति पूजा के बजाय टीम, उत्तराधिकार और संस्थागत क्षमता का महत्व। बीकमिंग स्टीव जॉब्स का उपयोगी पक्ष यह है कि यह एप्पल के पुनरुत्थान को केवल एक व्यक्ति की वापसी का चमत्कार नहीं बताती। जॉब्स की भूमिका निर्णायक थी, विशेषकर उत्पाद केंद्रितता, ब्रांड की स्पष्टता और उच्च मानकों को फिर स्थापित करने में। फिर भी पुस्तक एप्पल, पिक्सार और डिज्नी के भीतर उन सहयोगियों की भूमिका पर ध्यान देती है जिन्होंने विचारों को वास्तविक उत्पादों, संचालन और रचनात्मक काम में बदला। जॉनी आइव के साथ डिजाइन संबंध, टिम कुक की संचालन क्षमता और पिक्सार की रचनात्मक नेतृत्व व्यवस्था इस व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण नेतृत्व को करिश्मे से आगे ले जाता है। प्रभावी प्रमुख का काम हर कार्य स्वयं करना नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों की क्षमताओं को एक साझा दिशा में संगठित करना है। जॉब्स के बाद के दौर में एप्पल की विशेषता केवल उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, बल्कि ऐसी कार्य संस्कृति भी थी जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता, गोपनीयता, एकीकरण और निर्णय की स्पष्टता को महत्व दिया गया। पुस्तक के अनुसार उनका विकास इस बात में दिखता है कि वे बेहतर लोगों से सीख सके और कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें सौंप सके। यह निष्कर्ष विशेष रूप से संस्थापकों के लिए प्रासंगिक है। आरंभिक चरण में व्यक्तिगत नियंत्रण गति दे सकता है, पर संस्था को टिकाऊ बनाने के लिए विशेषज्ञता पर भरोसा और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था चाहिए। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो उद्यमिता, प्रौद्योगिकी इतिहास, उत्पाद विकास या नेतृत्व के विकास को समझना चाहते हैं। एप्पल के प्रशंसकों को इसमें कंपनी की वापसी, नेक्स्ट और पिक्सार के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन इसका बौद्धिक लाभ इससे व्यापक है। यह पुस्तक किसी नेता के व्यक्तित्व को स्थिर लेबल में बांधने से सावधान करती है। जॉब्स न तो केवल प्रतिभाशाली नवप्रवर्तक थे, न केवल कठिन स्वभाव वाले प्रबंधक। लेखक उनके व्यवहार की लागत, उनके संबंधों की जटिलता और समय के साथ आए व्यावहारिक बदलाव तीनों को साथ रखते हैं। इसलिए पाठक असफलता के बाद पुनर्निर्माण, विशेषज्ञों से सीखने, सीमित प्राथमिकताओं और उत्पाद सादगी जैसे विषयों को ठोस संगठनात्मक संदर्भ में देख सकता है। समान श्रेणी की कई जीवनियां उपलब्धियों, विवादों या प्रसिद्ध उत्पादों की कालक्रमिक सूची पर अधिक टिकती हैं। बीकमिंग स्टीव जॉब्स का भेद इसका विकास केंद्रित ढांचा है। यह विशेष रूप से उन वर्षों को गंभीरता से लेती है जब जॉब्स एप्पल से बाहर थे और जिनके बिना उनकी बाद की सफलता को समझना अधूरा रहेगा। फिर भी इसे अंतिम या निष्पक्ष रूप से पूर्ण विवरण मानना उचित नहीं होगा। यह जॉब्स की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और इसका दृष्टिकोण उनके परिपक्व होने की व्याख्या को प्राथमिकता देता है। इसी सीमा को ध्यान में रखकर पढ़ने पर यह जीवनी नेतृत्व के बारे में अधिक सूक्ष्म प्रश्न उठाती है। असली सीख किसी व्यक्तित्व की नकल नहीं, बल्कि क्षमता, अनुशासन, सहयोग और आत्मसंशोधन के संबंध को समझना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्रेंट श्लेंडर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।